से आते हैं। प्रकृति से देवताओं को सब कुछ मिल जाता है, प्रकृति ही देती है सब कुछ। अब भी हमें सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है तो अन्न भी सहज उगेगा, प्रकृति में भी सुगंध होगी, हवा जब चलेगी सुगंधित होगी। ऐसा राज बाबा स्थापित कर रहे हैं, हम सब उसमें बाबा के सहयोगी हैं। बनना चाहेंगे आप सभी राजा? राजा रानी भी बनेंगे, रानी भी या राजा ही राजा? तो सभी अपनी राज व्यवस्था पर आज विचार करें। हमारी राज व्यवस्था बहुत सुंदर चले तो हम कैसे होने चाहिए? जैसा राजा वैसी राज व्यवस्था। व्यवस्था आप ही नहीं बन जाती, राजा को उसको बनाना होता है। आज की व्यवस्था अलग है, दोष केवल राजाओं का नहीं, आजकल संपूर्ण तमो प्रधानता है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कोई भी शासक वो कुछ नहीं कर सकता जो वो करना भी चाहे तो। आज की बात अलग है, यहाँ राजाओं का चुनाव भी होगा। मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ और फिर हम राज व्यवस्था और उस राज की व्यवस्था को संभालने वाले राजा अब कैसे हों। मैं से एक प्रश्न पूछा जाता था कभी कि सतयुग में जब समस्या नहीं है, कोई प्लान नहीं बनाना है विशेष, कोई समाधान नहीं देना, राजाओं को टैक्स नहीं लेना, गुप्तचर विभाग नहीं बनाना, इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं करनी, जो आज है एजुकेशन नहीं, थोड़ी सी होगी ना, आज का शायद कुछ भी न हो, फिर वहां लक्ष्मी नारायणी गद्दी पर बैठे, क्या जरूरत है किसी छोटे को बैठा दिया जाए पकड़ के। मैं से प्रश्न पूछते थे अभी, कोई कोई किसी को भी क्यों न बैठा दें, जरूरत क्या है अश्रतनी बैठे? क्या उत्तर है? सोचना गहराई से, सीक्रेट। उत्तर मोटा नहीं होगा। उन्होंने ऐसा पुरस्कार किया ये अलग बात है, क्यों नहीं बैठाया जाए? अब देखिए कई लोग सोचते हैं बाबा मामा पहले लक्ष्मी नारायण हैं, और जब वो थे तब ब्राह्मणों की आबादी केवल 10,000 थी, 10,000 पे तो राज नहीं करेंगे वो। ब्रह्मा बाबा की तो प्रजा अब हम सब हैं ही, क्योंकि उनका सहयोग हमें मिल रहा है, पूर्ण सहयोग पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा का मिल रहा है। क्यों किसी को भी नहीं बैठा दिया जाएगा गद्दियों पर? गद्दी पर बैठने वाला सर्वशक्ति संपन्न, संपूर्ण दिव्य बुद्धि से युक्त, श्रेष्ठ चरित्रवान ही होना चाहिए। तीन क्वालिटी हम रखेंगे, चरित्र में प्योरिटी गुण सब आ गए। अगर कोई किसी को भी बैठा दें तो जो सतयुग की स्थिति है वो डगमगा जाएगी, सतयुग बहुत जल्दी त्रेता में बदल जाएगा, 100 साल में पतन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए राजा जो जिम्मेदार है वो उस समय की सबसे शक्तिशाली आत्मा ही होनी चाहिए। उसके वाइब्रेशन से प्रकृति भी कंट्रोल में रहेगी, सतो प्रधानता उसकी कायम रहेगी। और अगर किसी साधारण आत्मा को बैठा दिया जाए, उसके कमजोर वाइब्रेशंस जल्दी गिरावट को निमंत्रित कर देंगे। तो कैसी होगी सतयुग की व्यवस्था? मकान बनेंगे, बनेंगे महल या नहीं? बनाने वाले भी होंगे, उनके डिजाइन भी बनेंगे, कपड़े भी बनेंगे, सिलाई करने वाले भी होंगे, तो धागा तैयार करने वाले भी होंगे, तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री भी होंगी या नहीं? लोग सोचते हैं सतयुग में क्या काम होगा, ये काम नहीं होगा। क्वाइंस बनेंगे, जेवर बनेंगे, साड़ियां सिंपल नहीं होंगी, हीरे मोती जड़े होंगे उनमें, तो ये सब काम करने वाले भी तो होंगे, कारोबार चलेगा पर सुव्यवस्थित चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो गड़बड़ आज होती हैं वो वहां नहीं होंगी, क्योंकि राजा स्वयं डिसिप्लिन्ड है, उसने अपने मन पर राज किया हुआ है, वो कर्मेंद्रियों का मालिक है, वो स्वराज अधिकारी बन गए थे यहाँ और वहां भी हैं। बाबा के कई शब्द मुझे याद आ रहे थे, तुम्हारे अंदर रूलिंग पावर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। कभी बहुत पहले बाबा ने कहा था, राजयोग राज करने की ट्रेनिंग है, राजयोग राज करने की ट्रेनिंग है। मुझे एक हंसी की बात याद आ गई, एक बार आबू में कलेक्टर्स का कोई छोटा सेमिनार हो रहा था, तो उनमें से 17 लोग हमारे यहाँ देखने आए, ज्ञान सरोवर बन चुका था, तो किचन में आए, मैं उनको बता रहा था, तो उन्होंने थोड़ी देर में सब कुछ देख लिया था, बुद्धि से परख शक्ति से, तो पूछने लगे, आप लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग ली है? बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैंने हंसी में कहा, तब एक चीज हमारे यहाँ थोड़ी प्रचलित थी, आप लोगों की ट्रेनिंग का नाम है, डिग्री का नाम है IAS, हमारी ट्रेनिंग का नाम है WAS, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हमारी वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और राजयोग हमें विश्व पर राज करने की कला सिखा देता है, ट्रेनिंग दे देता है। जो स्वयं मर्यादाओं में आ जाते हैं कानून, उनके द्वारा ही कानून का राज्य स्थापित हो जाता है। जो सत्य धर्म को पालन करते हैं जीवन में, उनके द्वारा ही राज्य में सत्य धर्म की स्थापना हो जाती है। जो यहाँ श्रीमत का संपूर्ण पालन करते हैं वो वहाँ एक मत हो जाते हैं। जिनकी स्थिति यहाँ अचल अखंड अडोल रह जाती है वो अखंड राज्य के मालिक बन जाते हैं। बहुत गहरा ये कनेक्शन है। मुझे याद आ रही थी बहुत सारी चीजें द्वापर युग के राजाओं की, कुछ सम्राट ऐसे हुए हैं भारत में द्वापर युग से जिन्होंने इतिहास पढ़ा हो, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को यूनाइट किया, एकता के सूत्र में बांधा। उस समय भारत में मुख्य रूप से 5 मुख्य राज्य होते थे, फिर छोटे होते थे उनके अंदर, लेकिन कुछ सम्राट ऐसे हुए जिन्होंने महसूस किया कि ये सब आपस में लड़ते रहेंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, विदेशी आक्रमणकारी भारत पर अधिकार कर लेंगे। इतिहास बाद का बताता है कि विदेशी आक्रमणकारी इसीलिए सफल हुए क्योंकि भारत के राजा आपस में लड़ते थे, सहयोग नहीं करते थे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और बदले की भावना रखते थे। तो द्वापर युग में कई सम्राटों ने भारत को एक कर दिया ताकि संपूर्ण सत्ता एक के हाथ में रहे। भले राज थे, वो स्वतंत्र भी थे, लेकिन संपूर्ण सत्ता एक के हाथ में रहती थी। तो विदेशी आक्रमण जब भी हुए वो परास्त हुए या उन्हें निकाल दिया गया थोड़े से ही समय में, लेकिन बाद में हम सब जानते हैं इतिहास में जो आए उनको निकाला नहीं जा सका, बहुत मुश्किल हो गई। अंग्रेज भी आए तो 200 साल जमे रहे और उनकी नीति ये थी सबको अलग अलग रखना। तो एकता का राज बाबा स्थापित करता है। ये बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं, जो एक कीमत पर चलते हैं वो एकता का राज स्थापित कर सकते हैं। जो सत्य धर्म में, हमारा सत्य धर्म है पवित्रता, जो इस सत्य धर्म का संपूर्ण पालन करते हैं वो एक धर्म की स्थापना कर देते हैं। तो हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सतयुग की व्यवस्था के बारे में आप सोच लेना, मकान बनाना है किसी को, महल बनाना है, तो राजा से परमिशन लेंगे या नहीं लेंगे? जितनी जमीन चाहिए बस उतनी ले लेंगे। हर महल में क्या क्या होगा विचार करें, ये मेरा अपना एक संकल्प है, एक विजन है, हरेक के महल में खेती भी, फल फूल वृक्ष भी, वहीं सब कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा अंदर ही। गाय होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि दूध घी है बहुत, तो गाय तो होगी, भैंस नहीं होंगी। भैंसों ने क्या बुरा किया भाई जो भैंस नहीं होंगे सत्य में? अच्छा, तो महल को जगह इतनी बड़ी होगी हरेक के, तो उसी में सब कुछ प्रबंध होगा। पेड़ों के लिए बाबा ने कह दिया बस ऐसे ही होंगे, तोड़ेंगे और खाएंगे। आजकल भी हो गई है ये सब व्यवस्था, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो कुछ सतयुग में हमारे पास होगा वो यहीं से अब तेजी से होने लगा है, और जो नहीं होगा वो लोप होने लगा है। बहुत कुछ नहीं होगा वहाँ, वो सब चीजें लोप हो जाएंगी अगले 10-12 सालों में ही, 20 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा, और वो सब इन्वेंट कर ली जाएंगी वैज्ञानिकों के द्वारा जो सतयुगी राज्य में होंगी। तो एक सुंदर व्यवस्था चलेगी, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, पर राजा होगा प्रजा का क्या पिता, माता पिता होंगे राजा रानी, और पूरा संसार उस समय जितना भी है वो एक परिवार की भांति होगा। राजाओं के पास, विश्व महाराजन के पास आना जाना वैसे ही होगा जैसे बच्चों का अपने माता पिता के पास आना जाना। वहां और ये सब शक्ति नहीं है, न किसी को टैक्स देना है। क्यों नहीं टैक्स देना है? मालिक तो हैं, पर टैक्स क्यों नहीं देना है? राजा ही खुद बहुत संपन्न है, उससे ज्यादा संपत्ति और किसी के पास है ही नहीं। वो संपूर्ण संपन्न है, यहां से ही संपन्नता को प्राप्त करके गए हैं। सुना है आपने बाबा की मुरलियों में, सतयुग में बाप अपने बच्चे को वर्षा नहीं देता। क्यों? वर्षा यहां से लेकर गए हैं सब, वो तो केवल एक परंपरा है, वो चलती रहेगी, लेकिन वर्षा सभी लोग यहां से लेकर चले गए हैं। तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था, ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है जहां कोई समस्या नहीं जिसके समाधान के लिए कोर्ट की जरूरत पड़े, कोई ऐसा अपराध नहीं जिसको रोकने के लिए पुलिस की जरूरत पड़े, किसी का भय नहीं जिसके कारण मिलिट्री की जरूरत पड़े। राजा संपन्न है, न सेल टैक्स, न इनकम टैक्स, न और कोई। आजकल तो बहुत सारे टैक्स है ना, एक्साइज, कस्टम, सेल, इनकम, और भी कुछ होंगे हमें पता नहीं उसका, टैक्स ही टैक्स है। तो ऐसी व्यवस्था ही है संपन्नता। प्रकृति भी इतनी संपन्न कर रही है सबको, क्योंकि सब प्रकृति के मालिक बन गए हैं। प्रकृति भरपूर है, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे रहने की हो, चाहे पानी की हो, दूध की हो, सब भरपूर है। देवता शुरू में कुक्ड भोजन बहुत कम खाएंगे, कुक्ड भोजन, पका हुआ भोजन। कैसा खाएंगे फिर? कच्चा ही खा जाएंगे सब तो ये अच्छा नहीं लगता, कच्चा ही खा जाएंगे। बहुत चीजें खाने की इतनी टेस्टी होंगी कि उन्हें ये नहीं लगेगा कि कच्चा खा रहे हैं। प्रकृति इतनी रसीली है, आज तो देखो आप सेव भी खाओ मजा नहीं आता। कोई स्वादिष्ट सेव आपको मिल जाए कभी तो आपको पता लगेगा असली सेव का टेस्ट क्या होता है। दूध एक गिलास अगर रियल मिल जाए कहीं आपको, सीधा उधर से जहां से भैंस और गाय रखती हैं, साथ साथ निकाल के देते हैं, और गाय भैंस का भोजन बहुत अच्छा हो चारा, तो आपको पता चलेगा असली दूध में क्या स्वाद है, क्या कितना पौष्टिक है वो। आज वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है, फलों में रस नहीं रहा है, जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है उनको। सतयुग में ये सब नहीं है, प्रकृति सब कुछ देने के लिए तैयार है। कहां से आई प्रकृति में ये ताकत? हाँ, किसने कर दिया उसको ऐसा योग्य? हम सब ने कर दिया। और एक चीज ने और कर दिया जो बाबा इशारों में मुरलियों में बता देता है, सबसे बड़ी खाद किसकी मिलेगी धरती को? बस मैं नहीं बोलूंगा, आपने ही बोल दिया। कैसा प्लान है सृष्टि में, इसको प्रभु प्लान कहें या ये ड्रामा की कैसी वंडरफुल रचना है। धरती का खाली होना, धरती का सारहीन होना, धरती का जो उसमें एनर्जी है, जो शक्ति है अन्न देने की, वो समाप्त हो जाना और फिर भरपूर होना बहुत जल्दी, इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी प्योरिटी का। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से ख्याल में लाएंगे, नेचर प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव है, तुरंत ग्रहण कर लेती है। और सबसे पावरफुल प्रकृति के लिए वाइब्रेशंस है ही प्योरिटी के। पानी पे आप इसका छोटा प्रयोग करके देख सकते हैं, पानी को दृष्टि देकर कुछ अच्छे संकल्प कर दो, पानी में उस तरह की एनर्जी भर जाएगी और उसका उपयोग जहां तहां किया जा सकता है। हमारे संकल्पों की एनर्जी, हमारी प्योरिटी की एनर्जी प्रकृति के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तो जिनको राज करना है सतयुग में प्रकृति पर भी और संसार पर भी, उन्हें पवित्रता के द्वारा इस प्रकृति की पालना करनी ही है। बाबा हमेशा कहते हैं धर्म और राज दोनों स्थापित कर रहे हैं बाबा। राज के लिए मुरलियों में हमेशा बोलते हैं तुम योग बल से अपना राज स्थापित कर रहे हो। तो योग बल से होता है राज स्थापित, और पवित्रता के बल से होता है धर्म स्थापित। धर्म की शक्ति प्योरिटी में है। हमारे पास भी हम सेवाओं को प्योरिटी के आधार से ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वही उसके पीछे रहस्य है। तो हमें ऐसा राज स्थापित करना है जहां व्यवस्था में किसी को किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, न देवताओं को देवताओं की, न देवताओं को अपने राज्य अधिकारियों की, न किसी व्यवस्था की। सब कुछ एक्यूरेट चलता है, परफेक्टली चलता है। उसके लिए मैं हंसी में एक चीज लिखाई इसमें अपने प्रोजेक्ट में, जिसको राजा बनना हो वो 8 घंटे योग करे, जिसको राजाओं के समीप रहना हो वो 6 घंटे करे, जिसको साहूकार प्रजा बनना हो वो 4 घंटे करे, जिसको हल्की प्रजा बनना हो वो 2 करे, और जिसको राहसाह बनना हो वो 1 करे। एक सिंपल व्यवस्था यहां हम ले लें अपने लिए। राजा तो सब बनना चाहेंगे। बाबा की मुरलियां हम पढ़ सकते हैं 69 एंड की, शुरू की बिल्कुल 70 की, जिसमें बाबा ने कहा, मुझे याद है कभी इलेक्शन हो रहा था भारत में, तो बाबा की मुरली चली तभी, तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी इलेक्शन होता है, राजा वही बनेंगे जो सभी के दिलों पर राज करते हों, यानी दिल से जिनको सब वोट देते हों, दिल से चाहते हो, वो व्यक्ति जो वर्तमान में राजा हो लेकिन सबके दिल पर राज न करता हो, वो वहां राजा नहीं बनेंगे। कोई व्यक्ति बिल्कुल छोटी सेवा कर रहा हो लेकिन अपनी स्थिति, व्यवहार, अपनी रॉयल्टी, अपनी धारणाओं से सबके दिल पर राज करता हो, वो राजा बनेंगे। वोटिंग सिस्टम वहां भी है। प्रजा को राजा पूरी तरह संतुष्ट करेगा। सतयुग में राजा संपूर्ण प्रजापालक है। यहां जो सबको संतुष्ट कर पाएंगे वो राजा बनेंगे। बाबा ने 5% की छुट्टी दे दी थी, याद हो आपको? मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। दादी के समय में दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा सबको संतुष्ट करना बड़ा कठिन काम है। कठिन है या सहज? सचमुच कठिन है। बाबा ने कहा अच्छा कठिन है तो 5% की छुट्टी है। यानी 5% नाराज भी रहे तो चल जाएगा, पर 95% संतुष्ट होने चाहिए। तो राजा का ये सबसे प्रमुख लक्षण होगा उसमें पालना का संस्कार, बिल्कुल अपनापन सबसे, हदे नहीं। ये मेरा है तो इसकी पालना हो, ये तेरा है तो इसकी पालना ना हो, ये नहीं, संभाव। मुझे याद आ रहा था राजाओं की कुछ बातें, भारत में भी राज व्यवस्था ऐसी रही है कि राजा लोग रात को अपनी नगरी में घूमते थे गुप्त वेश बनाकर, दो चीज देखने के लिए, मेरे नगर में कोई भूखा तो नहीं सोता, मेरे नगर में कोई रोता तो नहीं। एक और मान्यता थी, इन सब को हम जोड़ सकते हैं अपने राज्य व्यवस्था से, क्योंकि वर्तमान में हम राजा स्थापित कर रहे हैं, वर्तमान में हमारा स्वरूप सतयुग की राज व्यवस्था के स्वरूप से मिलता अवश्य हो, थोड़ा भी मिले, मिलन अवश्य होना चाहिए। एक और बात, एक मान्यता मैं आपको सुना देता हूं। किसी राज्य में अगर अकाल पड़ जाता था तो एक आम मान्यता थी कि राजा ने कोई पाप किया है, सूक्ष्म गति। और ये मान्यता थी कि प्रजा में अगर पाप होता है तो उसका 10% राजा को जाता है, पुण्य होता है उसका 10% राजा को चला जाता है। इतनी जिम्मेदारी राजा की, तो उसको बहुत चरित्रवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली होना चाहिए। सतयुग की हमारी राज्य व्यवस्था में हम इसको ऑलमाइटी गवर्नमेंट कह सकते हैं, शक्ति संपन्न सरकार है वहां। इसीलिए कहीं किसी गड़बड़ की, लड़ाई झगड़े की आशंका ही नहीं है। क्यों लड़ाई झगड़ा नहीं है? क्योंकि राजा विश्व महाराजन संपूर्ण शक्तिशाली है। ये स्थिति यहां हमें लानी है। संपूर्ण बुद्धिमान, दिव्य बुद्धि से संपन्न। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? ये बहुत सुंदर शब्द है ये हमारे पास, दिव्य बुद्धि। जो बुद्धि व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो, जिस बुद्धि में किसी भी तरह की गंदगी भरी हुई न हो, जो पवित्रता में संपन्न हो, जो ईश्वरीय नशे में संपन्न हो, ऐसी बुद्धि जिसमें ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ भरा हुआ नहीं है, जिसमें संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण शुभ भावनाएं, संपूर्ण रूप से अपनापन संपूर्ण भरा हुआ है, ये दिव्य बुद्धि है। किसी के लिए भी जिसमें कल्याण की भावना नहीं है, वो दिव्य बुद्धि है। तो ऐसी दिव्य बुद्धि सतयुग में श्रेष्ठ और परफेक्ट बुद्धि में बदल जाएगी, क्योंकि राजा को, राज्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए यथार्थ निर्णय लेने आवश्यक हैं। ऐसे निर्णय जो सबको पसंद भी हों और कल्याणकारी भी हों। राजा के निर्णय अगर गलत हो जाते हैं तो व्यवस्था बिगड़ सकती है, चाहे वो सतयुग की क्यों न हो। लेकिन राजा बुद्धि से संपूर्ण रूप से भरपूर है, दिव्य बुद्धि है, परफेक्ट इंटेलेक्ट है उसके पास, इसलिए उसके डिसीजन बड़े नेचुरल से सहज भाव में लिए गए, बड़े कल्याणकारी हैं, चरित्रवान। कोई भी राजा गद्दी पर बैठा व्यक्ति अगर चरित्रवान नहीं है तो प्रजा में उसकी लहर तेजी से फैल जाएगी, जैसे आजकल फैलती है ना। एक नेता ने पैसा ले लिया हो ना, सारे अधिकारी पैसा इकट्ठा करने लगेंगे, वो भी तो ले रहे हैं। राजा का इफेक्ट तुरंत प्रजा में फैल जाता है। तो राजा को संपूर्ण चरित्रवान होना भी आवश्यक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके आधार पर आगे आप लोग चिंतन करेंगे। सतयुग में हमारी व्यवस्था में संपूर्ण सुख है, संपूर्ण प्रेम है, संपूर्ण संतोष है, और भी आप ले सकते हैं, पर ये सब हमें दिखाई देता है। संपूर्ण सुख, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण संतुष्टता, और आगे सोचें उदारता, बहुत ज्यादा उदारता, दातापन। वहां लेने वालों की कमी पड़ जाएगी, देने वाले ही होंगे सब, देवता माना दाता ही हैं, देने वाले, और राजा तो संपूर्ण रूप से दाता है। यही क्वालिटीज हमें अब भी यहां पर बढ़ानी है। बहुत सुख, केवल अपने तक सीमित सुख नहीं, राजा बनने वालों की क्वालिटी सब सुखी, उनके साथ रहने वाले सभी सुखी हों। ये नहीं मैं तो सुखी हूं बाकी से मुझे क्या लेना, राजा ये नहीं सोच सकता। प्रजा का सुख राजा का सुख होगा, प्रजा का कष्ट राजा का कष्ट होगा। संपूर्ण संतोष है, सब कुछ भरपूर है, संपूर्ण प्रसन्नता है, उदारता है, बहुत खुलापन है। मेरेपन की लिमिटेशंस हैं ही नहीं, इनको भी हम बहुत बढ़ाएंगे। तो अब जिन जिन को राजा बनने की इच्छा हो, ताज, कलयुग का ताज तो आजकल के नेता भी कहने लगे हैं, कोई कहता है विषैला ताज है, कोई कहता है कांटों का ताज है, क्योंकि नींद नहीं आती ना। फिर अगर सत्य पर चलें तो सत्य और असत्य के टक्कर होने लगती है, मनुष्य को टेंशन हो जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं रात ही अंधेरी है तो अपने घर में भी अंधेरा कर लो तो ठीक चलेंगे। समझ गए ना इसका अर्थ। पाप का ही सब कुछ है तो पाप की नदी में तुम भी बहने लगो तो ठीक चलते रहोगे, अगर पुण्य का मार्ग अपनाया तो वो कष्टों से भरा हुआ होगा। ये तो कलयुग में है ही और होना ही है, लेकिन हमारा मार्ग संपूर्ण सत्यता का है। हम अब एक प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी 15 मिनट और 5 मिनट के बाद, जिसमें सभी राजा बनेंगे और अपनी व्यवस्था पर दृष्टि डालेंगे। जैसे छोटे जब स्टूडेंट थे छोटे तो लिखाया जाता था एक ऐसे, बुजुर्गों को भी याद होगा, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो। अब यहाँ है होता तो, और हम चिंतन करेंगे और लिखेंगे, अगर मैं सतयुग में विश्व महाराजन बन जाऊं तो। पसंद है, लिख लेना सभी जिन जिन को बनने की इच्छा हो, या कोई सोचते हैं इस झंझट में भी क्या जाना, कई ये सोचते हैं नई टेंशन ले लेते हैं हम, पुरुषार्थ करो, 8 घंटे योग करो, स्वराज अधिकारी बनो, सेवा करो, प्रजा बनाओ, ये नई टेंशन आए थे सुख शांति के लिए, ये नई टेंशन चालू हो गई, ऐसा तो नहीं सोचते बहने भाई लोग। भाई लोगों को पहले ही टेंशन ज्यादा रहती है परिवार चलाने की, ऐसा सोचते हैं। जितना हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ होता है हम तनाव से मुक्त होते ही रहते हैं। हमें प्राप्त बाबा की शक्तियां, हमें हर काम को सहज बना देती है। सफल राजा वही होगा जिसका काम ऑटोमेटिक चले। मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने मुझे बहुत पहले ये बात सुनाई थी और मैंने इससे सीख लिया था बहुत कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई थ्योरी चलती होंगी दुनिया में, फिलोसफी, उनमें एक था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो केवल अपने रूम में, अपने ऑफिस में शांति से बैठा है और उसके अंडर काम करने वाले सभी लोग आप ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको अपने ऑफिस से निकलकर अपने सारे डिपार्टमेंट में चक्कर लगाना पड़ता है। वो चक्कर लगाता है, लोग उसको देखते हैं तो सब काम ठीक करते रहते हैं। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर वो जो चक्कर भी लगाता है और शाउटिंग भी करता है, जहां तहां जाएगा लोगों को डांटेगा डपटेगा और जब वापिस ऑफिस में आएगा तो सिर पकड़ता हुआ आएगा। उसका काम भी अच्छा नहीं होता और उसे टेंशन भी बहुत रहती है। तो ये पहले नंबर का एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके वाइब्रेशन से सब काम होता है, ये हमारे सतयुग के विश्व महाराजन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ऐसा कि विश्व महाराजन को कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके एक जगह रहने मात्र से ही सारी व्यवस्थाएं परफेक्टली चलेंगी। सारे उसके अंडर काम करने वाले होंगे तो सही ना, अधिकारी कहें या उसके साथी सहयोगी कहें जो उनका काम चलाएंगे, वो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वालिटी हमें सीखनी है कि हमें ऐसे साथी तैयार करने हैं जो संपूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करें। हम हो तो काम हो, ये नहीं, हम न हो तो भी व्यवस्था वैसी ही चले, ऐसा एक दूसरे में विश्वास। और हम देख लें अब अपने अपने जीवन में, आप अपने अपने जो गृहस्थ में रहते हैं गृहस्थ में देखें, जो सेंट्रो में हैं वो सेंट्रो में देखें कि क्या हम अपने साथियों की अच्छी पालना करते हैं, क्या हमारे सभी साथी जो माता पिता बैठे हैं वो देखें बच्चे हमारी पालना से संतुष्ट हैं। कलयुग की सब बात जानते हुए विचार करेंगे, सब बात तो आप जानते हैं ना, बहुत निगेटिविटी है, लेकिन ये सब है होते हुए हम बहुत अच्छी उनकी पालना भी करते हैं, हम सबको संतुष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हों, हम सबको सुख भी दे रहे हैं, हम सबको एकता के सूत्र में भी बांधने में सफल हैं, हम सबको प्रेम भी बांट रहे हैं। अपने अपने परिवार और सेवा केंद्र में ये सभी को देखना है, या हम प्यासी नजरों से उनकी ओर देख रहे हैं। एक बाप अपने बच्चों की ओर भी प्यासी नजरों से देखता है, ये कब सुधरेंगे, ये कब मेरी बात मानेंगे, ये कब मुझे सम्मान देंगे, और फाइनली ये सोच लेते हैं ये सुधरेंगे ही नहीं। ठीक है, वो कलयुग के अंत का प्रभाव बहुत कुछ है, हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा ने एक बात और कही, तुम्हारा लक्ष्य सबको संतुष्ट करना भी है, लेकिन कोई असंतुष्ट हो रहा है इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अपनी स्थिति में असंतुष्ट हो जाओ, उसमें साक्षी होकर रहना है, शुभ भावनाएं देते चलना है। जो स्थूल में संतुष्ट नहीं होता उनके प्रति शुभ भावनाएं रखनी है। इस तरह अपने को राजा बनाने की ट्रेनिंग सभी स्वयं को स्वयं दें। राजाओं का ये कर्तव्य है इस समय कि अपने को कहीं भी उलझा न दें, हमारे पास ऐसी अच्छी कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर जिसको बाबा ने कहा, स्वयं पर रूल करने की पावर हो, मन पर राज करने की शक्ति हो और दूसरों की पालना करने का संस्कार हो, संस्कार संतुष्ट करने की इच्छा हो। इच्छा ही काफी है, इच्छा में मनुष्य त्याग भी कर देता है, कुछ सुन भी लेता है, किसी को हमें केवल शब्दों से संतुष्ट कर देना है, किन्हीं को भावनाओं से संतुष्ट करना है, किसी को जो उन्हें चाहिए वो देकर संतुष्ट करना है। बहुत अच्छी बात मुझे एक किसी ने कल बताई, बहुत अच्छी बात आई कहीं, कि तुम इच्छाओं को अपनी आवश्यकता न बनाओ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। दूसरी बात ही सारे में बताई, बहुत सुंदर बात है। भगवान से कोई धन मांग रहा है बहुत, वो उसे कह रहे हैं कि धन स्थिर नहीं होता। हिंदी में कहावत है, लक्ष्मी चंचल है, वो आज एक के पास है कल दूसरे के पास है। तो उन्होंने कहा धन स्थिर नहीं होता। स्थिर क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास धन है तो उससे तुम पुण्य काम कर दो, वो पुण्य स्थिर रहेगा। धन तो आज तुम्हारे पास है, हो सकता है 2 साल के बाद न रहे, कल न रहे, लेकिन अगर तुमने उससे पुण्य कर्म कर दिए उसका बल सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत अच्छी बात थी। तो हम सभी राजा बनने के लिए तैयारी करें और अपने अपने संगठनों में एकमत अखंड, खंड नहीं, ये तेरा ये मेरा ये नहीं, ये खंडन नहीं, लेकिन एक मत की स्थापना करें। और हमारे पास एक मत होने का सुंदर तरीका है श्रीमत। दुनिया में लोग एक मत नहीं हो पाते क्योंकि श्रीमत नहीं होती।